अथर्ववेदीय मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस उपनिषद के प्रथम तथा द्वितीय मंत्र से ब्रह्म विद्या के परंपरा को ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए श्रुति स्वयं बता रही है। ब्रह्म विद्या की परंपरा ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी को स्वयं ही जन्म के साथ ज्ञान होता है, उनको कहीं जाकर के गुरुकुल में रह करके ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। जन्म हुआ और पूर्व कल्प में उनकी साधनाएं संपन्न हुई हैं पूरी की पूरी, तो ईश्वर के द्वारा प्राप्त जो वेद है, ईश्वर केवल स्मरण कराते हैं वेद का, और वेद के अंदर जो ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक वाक्य है उसके स्मरण मात्र से वाक्य के बोध हो जाता है, स्मृत तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। ब्रह्मा जी को होता है बिना उपदेश के ही ज्ञान, और किसको वेद ने बताया है ज्ञान हुआ बिना उपदेश के? वामदेव ऋषि को, उनको तो गर्भ में ही हुआ, उनकी साधना भी पूर्व जन्म में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की पूरी हो गई थी। जो ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष हैं वो सारे के सारे निवृत्त हो गए थे, मात्र एक प्रतिबंधक शेष था, वो था भावी प्रतिबंध। उनका प्रारब्ध केवल एक ही शरीर से भोगने योग्य नहीं बना था। जब साधक शरीर बना था उनका, कई एक कर्म ऐसे होते हैं ना, फल देने के लिए सामने आते हैं, तो पुण्य कर्म भी और पाप कर्म भी, एक ही कर्म का फल कई कई जन्म भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों ने बताया है। तो पाप कर्म का फल भी अनेकों निकृष्ट जन्म लेकर के एक ही पाप कर्म का फल भोगना होता है। तो जब पहले पहले फल देने के लिए सामने आता है तो माना जाता है वो उस प्रारब्ध का फलोपभोग करने के लिए वो पहला जन्म हुआ, और उसी प्रारब्ध को भोगने के लिए वो शरीर छोड़ करके और दूसरा 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 ऐसा धारण करना पड़ता है। वो नया नया प्रारब्ध उस समय नहीं बनेगा, उसी कर्म का फल भोगना होगा। ऐसे पुण्य कर्म भी कुछ होते हैं जिनका फलोपभोग कई जन्मों में किया जाता है, तो वामदेव ऋषि का भी ऐसा ही था, उसे कहा जाता है भावी प्रतिबंध। थोड़ा सा वो प्रतिबंध था, वो पूर्व साधक शरीर छोड़ने के बाद वामदेव शरीर जो धारण करना है भविष्य का, उस शरीर धारण करते समय गर्भ में रहते हुए उस प्रारब्ध का अनुभव होना था, और वह प्रतिबंधक के रूप में शेष होने से पूर्व जन्म में वेदांत की सारी साधनाएं करने के बाद भी तत्त्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि बोध उनको नहीं हुआ। जन्म हुआ और गर्भ में वो प्रारब्ध भोग करके जैसे ही समाप्त हुआ उतना प्रतिबंधक तो साक्षात्कार उनको हुआ। तो वेद में ये दो उदाहरण मिलता है, एक तो ब्रह्मा जी को बिना उपदेश के अपने आप ज्ञान होता है और एक ब्रह्मा जी तो है ईश्वर के संकल्प से निष्पन्न, इसलिए वे मानस सृष्टिस्थ है। और ये जो वामदेव जी हैं योनि सृष्टिस्थ है, उन्हें माता के गर्भ में प्रतिबंधक प्रारब्ध का फलोपभोग करके क्षय होने पर पूर्व जन्म में श्रुत महावाक्य का स्मरण गर्भ में ही हुआ और बिना उपदेश के अहम ब्रह्मास्मि बोध हुआ। तो दो प्रकार की जो सृष्टि बताई गई थी, मानस तथा योनिज, तो मानस सृष्टि के एक उदाहरण वे हैं जिनको बिना उपदेश के ज्ञान हुआ ब्रह्मा जी, योनि सृष्टि के उदाहरण हैं वामदेव जी। तो फिर ब्रह्मा जी का एक विशेषण बताया गया था कि विश्वस्य कर्ता, वे स्थूल समस्त संसार के निर्माता हैं। तो 84 लाख प्रकार की योनि यानी शरीर, स्थूल शरीर का निर्माण वे ही करते हैं। वे मनु तक की सृष्टि करते हैं, मानस सृष्टि, उसके बाद में मनु को नियुक्त करते हैं अपने मानस पुत्र को योनिज सृष्टि का निर्माण करने के लिए। वहां से योनि सृष्टि प्रारंभ होती है। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र अनेक बनाए हैं संकल्प से, उनमें सबसे प्रथम पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं अथर्वा, और वे ब्रह्मा जी के पास जो ब्रह्म विद्या है उसके भी अधिकारी हैं। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म विद्या अधिकारी को प्रदान करते हैं। तो उनके अनेक मानस पुत्रों में से अथर्वा योग्य अधिकारी हैं ब्रह्म विद्या धारण करने के। तो मंत्र ने बताया कि अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। तो ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को ब्रह्म विद्या का उपदेश किया, इसलिए अथर्वा को भी उपदेश जन्य ब्रह्म ज्ञान हुआ। उनको ब्रह्मा जी रूपी अपने जो पिता हैं वे ही उनके गुरु भी हैं, ब्रह्म विद्या उन्हीं से प्राप्त की, इसलिए तो गुरूपदेश से प्राप्त हुई ब्रह्म विद्या अथर्वा जी को। अथर्वा ने अपने पिता तथा गुरु ब्रह्मा जी से उपदेश से जो विद्या प्राप्त की द्वितीय मंत्र में बताया जा रहा है, उन्होंने फिर अपने शिष्य को उस विद्या का उपदेश किया। तो ये कहते हैं कि अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वाताम पूर्ववाचांगिरे ब्रह्म विद्याम। अथर्वा के शिष्य हैं अंगी ऋषि। तो अंगी को अथर्वा जी ने उस विद्या का उपदेश किया जो पहले अपने पिता तथा गुरु ब्रह्मा जी से विद्या प्राप्त की थी। और फिर अंगी ने अपने आचार्य अथर्वा से प्राप्त विद्या का उपदेश अपने शिष्य को किया। अंगी नाम के ऋषि के शिष्य हैं, सत्य वह उनका नाम है। भरद्वाज के गोत्र में उत्पन्न होने के कारण उन्हें भारद्वाज भी कहते हैं। तो जैसे अर्जुन को भारत कहते हैं भरत के वंश में उत्पन्न होने से, ऐसे भरद्वाज ऋषि के वंश में उत्पन्न हुए हैं, नाम है सत्यवह, इसलिए उन्हें भारद्वाज भी कहा जा रहा है। उन्होंने आचार्य अंगी के पास से ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली और फिर सत्यवह ने भी इस ब्रह्म विद्या का उपदेश अपने शिष्य अंगिरा को किया। अंगी और अंगिरा ये अलग अलग दो ऋषि हैं। जो अथर्वा के शिष्य हैं वे अंगी हैं, जो सत्यवह के गुरु हैं, और सत्यवह के शिष्य हैं वे हैं अंगिरा। और अंगिरा ऋषि को सत्यवह ने उस ब्रह्म विद्या का उपदेश किया जिस ब्रह्म विद्या का एक विशेषण बताया गया परावराम। परावरा ब्रह्म विद्या उसे कहा जाता है जो पर से अवर्णे प्राप्त की है। पर कहते हैं पूर्व को। तो अंगिरा से पूर्ववर्ती है सत्यवह, उनसे अंगिरा ने प्राप्त की। सत्यवह से पूर्व में है अंगी, उनसे सत्यवह ने प्राप्त कर ली, इसलिए अंगी की दृष्टि में अवर यानी पश्चात भावी और पर यानी पूर्व भावी। तो पूर्व पूर्व आचार्य से उत्तर उत्तर आचार्य के द्वारा प्राप्त विद्या वो परावरा विद्या है, और उस परावरा विद्या का उपदेश सत्यवह ने अपने शिष्य अंगिरा को किया। ये ब्रह्म विद्या की परंपरा चल पड़ी। अंगिरा ऋषि के पास सुनक गोत्रीय सौनक ऋषि आते हैं ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए, जैसे नारद जी सनत कुमार जी के पास गए, भृगु अपने पिता तथा आचार्य वरुण के पास गए, ऐसे ही सौनक अंगिरा ऋषि के पास जाते हैं ब्रह्म जिज्ञासु बन करके। इसे तृतीय मंत्र में बताया जा रहा है कि सौनको हवई महाशालो अंगिरसं विधिवत उपसन्न पप्रच्छ। तो सुनक के पुत्र सौनक है जो नैमिषारण्य में अपने 88,000 शिष्यों के साथ सूत जी से पुराणादि का भी श्रवण करते रहते हैं, ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन वे उपनिषदों के ही सिद्धांत को पुराणों में कथा के माध्यम से समझाया ना, वो भी सुनते रहते हैं। वे ही सौनक सूत के जो श्रोता हैं, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए अंगिरा ऋषि के पास गए। सौनक का एक विशेषण है कि वे महाशाल हैं। महाशाल शब्द का अर्थ होता है महाग्रस्त। पूरी बिल्डिंग आपकी है कि कुछ माले हैं? वो गोकुल पूरी, उसमें कितने कुछ कमरे होंगे, कम से कम 25-30। लेकिन इनके यहां 88,000 शिष्य रहते हैं, तो इनके लिए फिर 88,000 तो कमरे होंगे कि नहीं होंगे? वो तो स्थायी सदस्य हैं उनके परिवार के 88,000, और फिर अतिथि लोग भी तो आते होंगे, उनके लिए कुछ अतिथियों के लिए भी कमरे होंगे, और कुछ सेवकों के लिए भी होंगे, तो कितने सारे वो मकान होंगे उनके। इसलिए उनको कहा जाता है महाशाल। तो बड़ी बड़ी शालाएं, और वो शिष्य रहते हैं तो खाली रह करके खाएं पिए और आराम करें इसके लिए तो नहीं रहते हैं ना, उनको क्लासरूम भी होने चाहिए अध्यापन के लिए, कक्षाएं चलाने के लिए जो अलग अलग कक्ष हैं, कमरे हैं, वे भी थे। और अकेले तो इतने ऋषियों को नहीं पढ़ा पाएंगे ना, इसलिए कुछ अलग अलग आचार्य भी थे। शिष्यों की संख्या बताइए 88,000। अलग अलग आचार्य होंगे तो उन आचार्यों की योग्यता के अनुसार उनको भी रहने के लिए कमरे दिए गए होंगे ना, तो कितना सारा वो निर्माण उनके यहां होगा उन्हें कहा। और भोजन पकाने के लिए भोजनशाला, फिर भोजन करने के लिए भोजनालय, ये सब जो है इनके आश्रम में था, इसलिए इनको कहा जाता है महाशाल। और ऐसे शौनक ब्रह्म जिज्ञासु बन करके अंगिरा ऋषि के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। किसी को आश्रम की व्यवस्था सौंप करके कि अब हम जा रहे हैं अंगिरा ऋषि के पास ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए, जो उनका योग्य होगा उसे व्यवस्था सौंप करके चलेगा। यहां विशेषण है कि विधिवत उपसन्न, तो जैसा शास्त्र बताता है आचार्य के पास जाने के लिए ऐसे गए, यानी समित पानी होकर के। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यह मुंडक मंत्र ही आगे बताता है जैसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाना है करके, वैसे समित पानी होकर के गए। और वहां जाकर के फिर ज्ञान का साधन परिप्रश्न को भी बताया गया है ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो अंगिरा को उन्होंने नमस्कार प्रणिपात भी किया, और फिर उनकी अनुमति से उनकी प्रसन्नता को देख करके प्रश्न भी किया। तो वो कहा कि पप्रच्छ, पूछा उन्होंने 88,000 शिष्यों के गुरु के मन में क्या प्रश्न होगा, क्या पूछा होगा उन्होंने। तो कहते हैं ये पूछा कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति, यानी इति पप्रच्छ, ऐसा पूछा कि हे भगवो यानी हे भगवान, मैंने आप जैसे महापुरुषों से सुना है और ऐसे युक्ति से भी लोक में जाना है कि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है। जैसे कोई सुबह सुबह जा रहा है किसी कार्य के लिए, रास्ते में एक ग्राम पड़ा, गांव पड़ा, वो कुम्हारों का गांव था, वहां देखा कि एक कुम्हार के आंगन में एक मिट्टी का बड़ा ढेर पड़ा हुआ है, गीली मिट्टी का कीचड़, जिससे घड़े बनते हैं। घड़े बनने के पहले वाली जो अवस्था है ऐसी मिट्टी है। और शाम को जब वापस लौट रहा था तो वहीं से निकला, वहां वो ढेर नहीं दिखा उसको, वहां देखा कई घड़े सैकड़ों की संख्या में सूख रहे हैं। तो अनुमान लगाता है कि सुबह में जिस मिट्टी को देख करके गया था वही मिट्टी अब कार्य रूप में दिख रही है। ये घड़े उस मिट्टी से अलग नहीं हैं, एक मिट्टी ही मिट्टी ये घड़े के रूप में प्रकट हुई है। का मतलब कारण मिट्टी को जानने से उसके कार्य मृतिकात्विन रूपेण सारे घड़े जाने जाते हैं। ऐसे दूसरे दिन जा रहा था तो स्वर्णकार के आभूषण बनाने वालों के मकान के सामने से निकला तो वहां देखा कि बहुत सारा सोना सोने की ईंटें रखी हुई है। और शाम को आते आते देखा कि कहीं एक सोने के आभूषण बनाने वाले कारीगरों ने कहीं किरीट तो कहीं कुंडल तो कहीं कंकन तो कहीं अंगूठिया तो कहीं चैन गले की बना करके रखी हुई है, उल्टे नहीं है। तो सुबह जो ईंटें देखी थी, मैंने सोना देखा था, वही सोना इस समय आभूषणों के रूप में है, उस सोने से अलग ये आभूषण नहीं है। तो सोने को जाना तो सारे आभूषणों का ज्ञान उसे हुआ, ये तर्क है। ऐसे आप जैसे महापुरुषों ने हमें बताया, सौनक जी कहते हैं कि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है, कारण से कार्य अलग नहीं होता। तो आप बताइए, संसार जो विचित्र है, अलग अलग कार्य के रूप में दिख रहा है, तो क्या इसका भी कोई एक कारण है जिसको जानने से ये कार्य रूप में प्रतीयमान विचित्र संसार सब का सब जाना जाएगा, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा? ऐसा कोई एक पूरे संसार का कारण है क्या? है तो वो कौन है जिसको जानने से सर्वज्ञ होता है, जानना कुछ बाकी ही नहीं रहता? ये प्रश्न सौनक जी ने आचार्य अंगिरा जी के पास किया। यहां पर सौनक को अंगिरा आचार्य के पास गए करके कहा, उपसन्न हुए का मतलब गए वहां पर। और पूर्व में जो परंपरा बताई उसमें नहीं बताया गया कि अंगिरा अपने गुरुदेव सत्यवाह के पास गए विधिवत, सत्यवाह अपने गुरु अंगी के पास गए विधिवत, ऐसा नहीं बताया। फिर अंगी अथर्वा के पास गए, अथर्वा ब्रह्मा जी के पास गए, ये विधिवत उपसन्न, इन दो पदों का प्रयोग पूर्व आचार्यों के साथ नहीं किया, सौनक और अंगिरा के भी संबंध के समय किया। और उपनिषद यहीं पर ब्रह्म विद्या की परंपरा को रोक भी रहा है, आगे फिर हम लोग पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, तो ये परंपरा चल रही है। तो ये माना जाता है एक प्रकार से आचार्य अंगिरा जी और शौनक ये जो ब्रह्म विद्या के उपदेष्टा तथा ग्राहक बन रहे हैं ये बीच वाले हैं और इनके पूर्वों में भी कुछ गुरु शिष्य परंपरा बताई, कुछ बाद में उत्तर में आएगी उसको उत्तर वाली को तो बताया नहीं जाता, लेकिन जो जो भी मुंडक उपनिषद के माध्यम से ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं, जिनसे प्राप्त करते हैं वो आचार्य और जिन जो प्राप्त करते हैं वो शिष्य, ये परंपरा। तो ये बीच वाले के साथ विधिवत उपसन्न ये विशेषण जोड़ करके श्रुति बताती है देहली दीप न्याय को। एक देहली दीप न्याय होता है, देहली दीप न्याय होता है किसी के पास एक ही दीप है और उसे प्रकाश चाहिए बाहर आंगन में भी और घर के अंदर भी कमरे में भी। तो कमरे के अंदर यदि दीप रखेंगे तो कमरे के अंदर तो प्रकाश होगा उसका, आंगन में नहीं होगा। आंगन में रखेंगे तो कमरे के अंदर नहीं हो पाएगा, इसलिए देहली कहते हैं वो जो द्वार होता है बीच में, आंगन से कमरे में जाने के लिए, कमरे से आंगन में आने के लिए, और उस द्वार के बीचों बीच में रख लेंगे दीप को तो वो अंदर भी प्रकाश करेगा बाहर भी प्रकाश करेगा, उसका प्रकाशकत्व रूपेण संबंध दोनों के साथ होगा, आंगन के साथ भी और कमरे के साथ भी। ये देहली दीप न्याय वहां लगाते हैं। ऐसे यह बीच वाले आचार्य तथा शिष्य के साथ विधिवत उपसन्न विशेषण जोड़ करके श्रुति कहती है पूर्व आचार्य और शिष्य के साथ न जोड़ने पर भी यहीं से वहां पर भी समझना। अथर्वा को भी ऐसी ही ब्रह्म विद्या नहीं मिली, वे भी विधिवत उपसन्न हुए ब्रह्मा जी के पास और फिर प्रणिपातादि के द्वारा उनको संतुष्ट करके, ये नहीं कि पुत्र हैं तो बिना नियम के ही ब्रह्म विद्या दी हो। वहां पर भी जो नियम है सबके लिए जैसा, वैसा ही नियम का पालन ब्रह्मा जी के पास करते हुए अथर्वा ने ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। वही नियम अंगी ने भी अपने आचार्य अथर्वा से ब्रह्म विद्या का लाभ करते समय पालन किया। उसी नियम का पालन अंगी से सत्यवाहा ने ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हुए किया और सत्यवाहा से अंगिरा ने प्राप्त की तो इसी नियम से की। ऐसे शौनक भी उसी नियम का पालन करते हुए विधिवत उपसन्न, ये विशेषण यहां का पूर्व के साथ भी जुड़ेगा, इनके साथ तो जुड़ेगा, ये देहली है अंगिरा और शौनक, और उत्तरवर्ती जो होंगे उनके लिए भी इसी नियम का अनुसरण करते हुए ही ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी। यह श्रुति बता रही है कि विधिवत उपसन्न, और जाकर के फिर प्रश्न किया, प्रश्न हुआ कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे जानने से सर्वज्ञ होता है, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। तो आचार्य अंगिरा जी शौनक के इस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं चतुर्थ मंत्र में। उत्तर तो सीधा सीधा उस वस्तु का स्वरूप बता करके देना चाहिए था, लेकिन सीधे वस्तु का स्वरूप न बता करके विद्या के दो प्रकार बताते हैं। क्योंकि यहां अपेक्षित है क्रम, ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या से निवर्त्य जो बंधन है उस बंधन को भी बताना जरूरी है ना, तब ब्रह्म विद्या का महत्व समझ में आएगा। उस दृष्टि से आचार्य अंगिराजी सौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि तस्मै सहु वाच, ये श्रुति वाक्य है। इसमें तस्मै का अर्थ है सौनकाय, तो सौनक को स यानी आचार्य अंगिराजी ने वाच यानी कहा, बताया, प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया। क्या बताया कि द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद् ब्रह्म विदो वदन्ति पराचेवा पराच। तो हे सौनक, दो प्रकार की विद्याएं होती हैं ये समझना, दो विद्ये वेदितव्य। तो कहा दो विद्याएं कौन सी हैं जो जानने योग्य हैं, प्राप्तव्य हैं? तो कहते हैं जिसे ब्रह्मवित यानी वेदार्थवित, यहां ब्रह्म शब्द वेद के लिए है, तो ब्रह्मवित शब्द का अर्थ परमात्मा को जानने वाले ऐसा नहीं, वेदार्थ को जानने वाले। तो वेदार्थ को जानने वाले जिस कारण से यह बताते हैं कि दो प्रकार की विद्याएं हैं, उन दो प्रकार की विद्याओं का नाम है, एक का पराविद्या दूसरी का अपराविद्या। पराविद्या तथा अपराविद्या भेद से दो प्रकार की विद्याएं ब्रह्मज्ञ लोग बताते हैं, यानी ब्रह्म है वेद, पराविद्या है परमात्म विषयक विद्या, वेदार्थ है धर्म और ब्रह्म। वेद हम लोगों का मूल ग्रंथ है, इसलिए हम लोगों को कहा जाता है वैदिक, और बाकी ये सब महाभारत रामायण तो गीता ब्रह्म सूत्र बाकी सब जो है ना, ये स्मृतियां कहलाते हैं, वे अनेक हैं, लेकिन ये सब वेदार्थ का सरलता से हमें बोध हो इसलिए उस समय के विद्वानों के द्वारा महापुरुषों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ पौरुषेय ग्रंथ हैं। हाँ, ब्रह्मसूत्र भी व्यास जी ने लिखा है, गीता भी व्यास जी ने लिखी है, महाभारत उन्होंने लिखा है, पुराण उन्होंने लिखा है। तो जैसे गीता महाभारत पौरुषेय है ना, ऐसे ब्रह्मसूत्र भी पौरुषेय है व्यास जी के द्वारा रचित होने से, तो ये पौरुषेय ग्रंथ है। लेकिन हमारा मूल ग्रंथ एक, मूल देवता भी एक, इसलिए एको देव सर्वभूतेषु गुणः। वो मूल देव कौन है? वो सारे प्राणियों के हृदय में अंतरात्मा के रूप में विराजमान, वो एक देवता है। फिर वह अधिकारी भेद से सामने वाले के दृष्टि से अनेक भी हो जाता है, लेकिन मूल तो एक है। और उस वेद में क्या कहा गया है ऐसा यदि कोई पूछे, जैसे बाइबल में क्या कहा गया, तो बता सकते हैं सही लोग, ये पढ़ते हैं वे लोग। और कुरान में क्या कहा, तो कुरान पढ़ते हैं वो लोग, पाठ करते हैं कुरान का, वो बताते हैं ये कहा गया। प्रेमपुरी आश्रम में रोज सत्संग में आप आते हैं, और आपको यदि कोई विधर्मी पूछे कि आपके वेद में क्या कहा गया, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे? तो सीधा ये उत्तर होगा कि वेद में दो बातें बताई गई हैं, धर्म और ब्रह्म, दो ही वेद के प्रकरण हैं और एक प्रकरण धर्म को बताता है, दूसरा प्रकरण ब्रह्म को बताता है। धर्म को बताने वाला जो प्रकरण वो कर्मकांड कहलाता है, वेद का है, वेद ही। जैसे गीता का पहला अध्याय भी गीता है, पंद्रहवा अध्याय भी गीता है, अठारहवा अध्याय भी गीता, हर एक अध्याय गीता, एक एक श्लोक भी गीता है। ऐसे कर्मकांड भी वेद है और ज्ञान कांड भी वेद है। और ज्ञान कांड किसको बताता है? ब्रह्म को। इसलिए हमारे वेद के द्वारा प्रतिपादित अर्थ है धर्म ब्रह्म। धर्म है लौकिक अभ्युदय का साधन और वेद के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म ज्ञान है मोक्ष का साधन। इसलिए वेद ने बताया हुआ प्रयोजन भी, वेद का प्रयोजन भी क्या है, वो भी दो प्रकार का है। वो है एक धर्म का फल और एक ब्रह्म ज्ञान का फल। ज्ञान कांड में ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ तो ब्रह्म ज्ञान होगा, ज्ञान कांड से उसका फल होगा निःश्रेयस मोक्ष। और कर्म कांड से प्रतिपादित धर्म का ज्ञान होगा और वो अनुष्ठान सापेक्ष फल देगा। कर्मकांड के अनुसार धर्म के स्वरूप को जानेंगे, फिर धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो उसका फल होगा अभ्युदय। और निष्काम भाव से धर्म करेंगे तो ज्ञान का अधिकारी बनाएगा वो धर्म हमें। हाँ, तो ये जो धर्म है और ब्रह्म, ये दो ही प्रकार का वेदार्थ है धर्म ब्रह्मात्मक। धर्म का अर्थ है अनुष्ठेय अर्थ और ब्रह्म है सिद्ध अर्थ, जिसका आपके प्रयत्न से निष्पादन नहीं होता, जो आपके प्रयत्न से निष्पादित हो, निष्पन्न हो, उसे कहा जाता है अनुष्ठेय। और जो आपके प्रयत्न से निष्पन्न न हो, किसी से भी निष्पन्न न होता हो, स्वयं सिद्ध हो, उसे कहा जाता है ब्रह्म, सिद्ध वस्तु, वो सिद्ध वस्तु है। तो ब्रह्म को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता और धर्म को तो वेद के अनुसार जान करके अनुष्ठान द्वारा निष्पन्न करना पड़ता है। तो इसलिए धर्म है अनुष्ठेय, ब्रह्म है सिद्ध वस्तु। और वो जो धर्म है, धर्म विषयनी विद्या का नाम है अपरा विद्या। धर्म विषयनी विद्या अपरा विद्या है और ब्रह्म विषयक विद्या पराविद्या कहा जाता है। तो पराविद्या अपरा विद्या ये दो प्रकार की विद्याएं हैं, उनमें से कर्मकांड प्रतिपादित अर्थ विषयक ज्ञान को कहा गया अपरा विद्या। फिर उसका उसमें सब धर्म का मतलब हुआ, धर्म का साधन, धर्म का स्वरूप और धर्म का फल, ये सब। और धर्म का मतलब अनुष्ठेय साधन। उस अनुष्ठेय साधन के अवान्तर दो भेद हैं, बाह्य इंद्रिया तथा शरीर से निष्पन्न होने वाले अनुष्ठेय साधन को कहा जाता है कर्म, और मानस प्रयत्न से निष्पन्न होने वाला जो है उसे कहा जाता है उपासना, वो भी अनुष्ठेय साधन है। और अनुष्ठेय साधन मात्र को कहा जाएगा अपरा विद्या, और उसके फल का स्वरूप उसका स्वयं का स्वरूप और उसके साधन का स्वरूप, ये सब अपरा विद्या कहलाएगा। कर्म के साधन पुरोहितादि, स्वयं यजमान, यज्ञ मंडपादि, अग्नि और हवि द्रव्यादि, ये भी अपरा विद्या है कर्म के साधन होने से। और कर्म का फल स्वर्गादि, ये भी अपरा विद्या के अंतःपाती है कर्म का फल होने से। ऐसे सकाम उपासनाएं, प्राणादि की उपासनाएं जो प्रश्न उपनिषद में बताई गई, अपरा विद्या है। और उपासना का साधन, उपासना का स्वरूप और उपासना का फल ब्रह्मलोक पर्यंत का, वो सारा अपरा विद्या कहलाएगा। वो अपरा विद्या है। और परा विद्या है निर्विशेष ब्रह्म विषय को ज्ञान। आगे बताया जाएगा परा विद्या कौन है। कहते अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। और अक्षर शब्द का अर्थ है निर्विशेष परमात्मा। तो निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति है उस निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान, मोक्ष। तो जिससे मोक्ष मिले उसे कहा गया पराविद्या। वो पराविद्या है एक प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारात्मिका वृत्ति। और उसका साधन होने से उपनिषदों को भी गौण रूप से पराविद्या कहा जाता है। तो ये दो प्रकार की विद्याएं हुई, अनुष्ठेय साधन रूपा और एक ज्ञान रूपा। ये दो प्रकार की विद्याएं हैं। अनुष्ठेय विद्या का फल है संसार, संसार है बंधन, और बंधन जिसका फल है वह अविद्या रूपा है। इसलिए अपरा विद्या को भाष्यकार तथा टीकाकार कहते हैं कि यह अविद्या ही है, अपरा विद्या, क्योंकि इसे, इसका फल भोगने के लिए अपरा विद्या का जो अनुष्ठाता है उसे जन्मांतर प्राप्त करना पड़ता है। इतना है कि मनुष्य से उत्कृष्ट देवादि शरीर मिलता है, लेकिन शरीर धारण करने वाला जो भी है, चाहे वो मनुष्य शरीर धारण कर ले या देवता शरीर धारण कर ले, छांदोग्य श्रुति कहती है शरीरधारी है तो उसे सुख दुख अवश्यम भावी है। सुख दुख से हमेशा के लिए मुक्ति शरीरधारी की नहीं होती है। न हवई स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति। जो सशरीर है का मतलब शरीरधारी है, शरीर में आत्माभिमान करता है। मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट देवादि शरीर में भी अहम अभिमान हो जाए तो भी वो अध्यासी कहलाता है। और अध्यास मात्र को कहा जाता है अनर्थ का हेतु। अनर्थ कहते हैं दुख को। तो जो शरीर को मैं मानेगा तो देवादि शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानेगा, और देवादि को मनुष्य की अपेक्षा ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन सुविधाएं उपलब्ध होने मात्र से ही सुखी होगा ये नहीं कहा जाता। जब कभी उनके सौतेले भाई असुर प्रबल होकर के उन पर करते हैं हमला और युद्ध में उनको पराजित करते हैं तो स्वर्ग को छोड़ करके भागना पड़ता है, मृत्यु लोक में हिमालय में आकर के छिप जाता है। और फिर वहां तपस्या करते हैं। तो इतने सारे सुख सुविधाओं में रहने वाले फिर हिमालय में आकर के कंदमूल फल खाना पड़े और हिमालय की ठंडी सहन करनी पड़े और वहां गुफा में रहना पड़े जो इंद्र महल में रह रहे थे उनको, तो कितना कष्ट होगा। जो असुविधा से सुविधा में रह रहा है उसको तो कम कष्ट होता है, लेकिन पहले खूब सुविधा में रहा हो और बाद में असुविधाएं जहां है वहां रहना पड़ता हो तो बड़ा कष्ट होता है। तो स्वर्ग जैसी सुविधाओं को छोड़ करके पहाड़ों में रहना पड़े तो बड़ा कष्ट है। तो इसलिए देवता शरीरधारी भी जब असुरों से पराजित होते हैं तो बड़े कष्ट भोगते हैं, दुख होता है उनको। और स्वर्ग में रहते समय भी सुख सुविधाएं मनुष्य की अपेक्षा अधिक होने पर भी वहां भी इंद्र का आसन थोड़ा बड़ा है, ऊंचा, इंद्र के मंत्रियों का आसन इंद्र की अपेक्षा थोड़ा छोटा है, और ये सब वहां पर भी तारतम्य है। तो किसी को कम अधिकार है तो किसी को अधिक अधिकार है, तो अधिक अधिकार वालों को देख करके कम अधिकार वालों के मन में दुख होता है। शरीरधारी है ना, तो शरीरधारी कोई भी हो उसे दुख जरूर होता है। और अपरा विद्या का फलोपभोग करने के लिए देवतादि का शरीर धारण करना ही पड़ता है। और अशरीर भाव में पहुंचाने वाला एक ही साधन है, वो है पराविद्या। पराविद्या यानी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार जिसको होगा तो अपराविद्या का जो कारण है अविद्या, मूल अविद्या अज्ञान, उसे वो दूर करेगा और भेद ज्ञान को अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार दूर करेगा। तो भेद ज्ञान नहीं होने पर, द्वैत ज्ञान न होने पर अपरा विद्या का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार ये अपरा विद्या का भी उच्छेदक बन जाता है ब्रह्म साक्षात्कार। और फिर शरीर में रहते हुए भी शरीर में यदि आत्मभाव नहीं है तो उसे सशरीर नहीं कहा जाता। सशरीर का मतलब है शरीर में तादात्म्य अभिमान मान, और शरीर में रहे लेकिन शरीर में तादात्म्य अभिमान न करें तो शरीर में रहता हुआ भी माना जाता है अशरीर ही है, वो होता है जीवन मुक्त। ब्रह्म साक्षात्कार जिनको हुआ वह उसे फिर श्रुति कहती है न लिप्यते लोक दुखे न, लोक शब्द का अर्थ है उसका कार्यकरण संघात, जो शरीर इंद्रिया है मन है, और शरीर इंद्रिय मन में होने वाले जो दुख हैं उन दुखों से लिपायमान वह नहीं होता जिसका उस शरीर में तादात्म्य अभिमान नहीं है। और तादात्म्य अभिमान छूटता है ब्रह्म ज्ञान से ही, पराविद्या से ही। इसलिए पराविद्या है हमेशा हमेशा के लिए दुख से मुक्ति दिलाने वाली, और अपराविद्या ये शरीर आदि में तादात्म्य अभिमान करा करके बंधन की ही हेतु है, सर्वथा दुख का निवर्तक नहीं बनती। ये दो प्रकार की विद्याएं बताई गई, इसमें से अपरा विद्या को पंचम मंत्र के पूर्वार्ध में बताया जा रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराच सूत्र भाष्य
वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।